यह आकाशवाणी दिल्ली है। नवगठित केंद्र सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश के मंडोला में स्थित पावर ग्रिड में आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने जल्द आपूर्ति बहाली का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही पानी की कमी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। यमुना में बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों के लिए शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का निरीक्षण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। उत्तर प्रदेश के मंडोला में स्थित पावर ग्रिड में आज आग लगने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बिजली कटौती की गई। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL शहर को 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है। दिल्ली के बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि बिजली बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न इलाकों में इसकी आपूर्ति की जा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आतिशी ने कहा कि वो केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल और PGCIL के चेयरमैन से बात करेंगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो। मॉनसून से पहले यमुना में बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का आज निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए श्री भारद्वाज ने बताया कि पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की रूकावट न हो इसके लिए आईटीओ स्थित बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। श्री भारद्वाज ने बताया कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने पायलट कट नामक एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है।
इस बार इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने सारी तैयारियां की हैं। पिछली बार जितना पानी भी आ जाएगा तो दिल्ली में कम यमुना में बाढ़ नहीं आएगी। करीब तीन महीने से काम चल रहा है। ये पायलट कट है, जो भी बीच में टापू बन गए हैं, सिल्ट आ गई है, वर्षों से जमा हुई सिल्ट के बीच में इस तरीके के चैनल बनाए गए हैं कि जैसे ही अब पीछे हरियाणा सा पानी आएगा, सारे के सारे जो ऑब्स्ट्रक्शन है, टापू है, ये सब जो है पानी के साथ बह जाएगा।
इस तकनीक के प्रयोग से बैराज के आसपास वर्षों से जमी मिट्टी पानी के तेज बहाव के साथ बहकर साफ हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि हालांकि ये बैराज हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, दिल्ली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार के साथ तालमेल करके ये तैयारियां की हैं। नवगठित केंद्र सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। श्री किरेन रिजिजू ने आज संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्रालय श्री मनोहर लाल ने, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री का, श्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री का, श्री संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, श्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री जीतन राम मांझी ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के तौर पर राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। फरीदाबाद जिले के अतिरिक्त उपायुक्त डॉ आनंद शर्मा ने आज कहा कि आगामी 16 जून को होने वाली यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में कोताही बरतने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा फरीदाबाद में होने वाली यूपीएससी की परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रों और अन्य ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। वर्तमान में UGC विनिमय एक वर्ष में एक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अनुमति देते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो विभिन्न कारणों से प्रवेश से चूक जाते हैं और उन्हें एक और साल तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इससे नामांकन के लिए प्रतीक्षा समय कम होगा और छात्र अधिक प्रेरित होंगे।
अभी हमारा कंट्री में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एडमिशन्स करते हैं और पूरा एकेडमिक ईयर मई जून में एंड होता है। इससे स्टूडेंट्स को जुलाई अगस्त में मिस होता है, इन्होंने पूरा साल वेट करने पड़ेगा दोबारा एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए यूजीसी ने डिसाइड किया कि अब से सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जुलाई अगस्त में एक एडमिशन कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में दूसरा सेकेंड साइकिल एडमिशन्स भी कर सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने आज सभी जिलाधिकारियों और विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ कांवड़ शिविर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सुश्री आतिशी ने बताया कि अगले महीने की 22 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ियों की सुविधा के लिए इस साल दिल्ली भर में लगभग 200 कांवड़ शिविर लगाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में कांवड़ियों के एंट्री एग्जिट प्वाइंट कांवड़ियों की सुविधा के लिए लगाए जाएंगे, सबसे अधिक शिविर लगाए जाएंगे। दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों के लिए बनाए गए शिविर में वाटरप्रूफ टेंट, फर्नीचर, शौचालय, पानी, मेडिकल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए स्थानीय डिस्पेंसरियों को शिविरों से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए कैट्स एम्बुलेंस की उपलब्धता होगी। साथ ही अस्पतालों को कांवड़ियों के इलाज के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप ने कहा कि हमें वर्तनी अशुद्धियों को दूर करने के लिए पूर्ण मन से प्रयास करना होगा, तभी हम शुद्ध हिंदी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और भाषा में हो रहे सरलीकरण को भी अपनाएं। प्रोफेसर शर्मा हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए दिल्ली की हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित एक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन हिंदी अकादमी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्यों, हिंदी विभागाध्यक्षों और प्राध्यापकों के साथ मिलकर किया। इस विचार गोष्ठी में लगभग 40 महाविद्यालयों के 70 प्राध्यापकों ने भाग लिया और हिन्दी के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही पानी की कमी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि श्री सैनी ने बताया कि चल रही गर्मी के कारण हरियाणा की अपनी बाधाओं के बावजूद ऐसा हो रहा है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी के भीषण संकट से क्षुब्ध हजारों लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और पूर्व विधायक चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर ने संबोधित किया। भाजपा नेताओं ने जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के त्यागपत्र की मांग की। श्री विधूड़ी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के झूठे वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन पिछले 10 सालों में न तो पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया गया है और न ही अतिरिक्त पानी को संशोधित करने के लिए कोई प्लांट लगाए गए। भाजपा नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक या राजनीतिक आधार नहीं है, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा की जीत से जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने राजधानी में पानी के संकट को आम आदमी पार्टी की सोची समझी साजिश बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ मिलकर इसे पैसे कमाने का एक जरिया बनाया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली के जल मंत्री, जल बोर्ड के चेयरमैन और उसके अधिकारी तथा दिल्ली सरकार जिम्मेदार हैं। श्री सचदेवा ने संवाददाताओं को कुछ गूगल टेक्निकल तस्वीरें और वीडियो क्लिप दिखाकर केजरीवाल सरकार की मिलीभगत से मुनक नहर क्षेत्र से टैंकर माफिया द्वारा पानी चोरी को उजागर किया।
दिल्ली में एंटर होने के बाद मुनक शहर से ककोरी जाते समय जो पानी गायब होता है वो पानी जाता था, ये वो टैंकर माफिया है जो दिल्ली सरकार के चेयरमैन, दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के अधिकारी ये वहां से सीधा पानी नहर से उठाते हैं। जो पानी दिल्ली की जनता के लिए आता है और उसको मनमाने दामों पर इसको बेचा जाता है। मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस नहर के किनारे ये आपके जल बोर्ड के या दूसरे टैंकर क्या कर रहे हैं।
श्री सचदेवा ने दिखाया कि कैसे हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के लिए पूरा पानी छोड़ा जाता है, पर कैसे मुनक नहर से काकोरी के बीच में ही टैंकर माफिया दिल्ली सरकार के सहयोग से पानी की चोरी करता है। उन्होंने कहा कि इन टैंकर्स में पानी भरकर शहर के पानी की कमी वाले इलाकों में मनमाने ढंग से बेचा जाता है और उसका पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री, जल मंत्री से लेकर हर छोटे बड़े अधिकारियों को जाता होगा, इसलिए वो सब चुप हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित केंद्र सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। उत्तर प्रदेश के मंडोला में स्थित पावर ग्रिड में आग लगने के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने जल्द आपूर्ति बहाली का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही पानी की कमी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। यमुना में बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों के लिए शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का निरीक्षण किया। श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर पर ले जाएगी। इससे पहले श्री शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की महापौर डॉ शैली ओबेराय ने आज नरेला क्षेत्र के तहत साफियाबाद बॉर्डर स्थित टोल नाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य टोल नाके की वजह से स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानियों का जायजा लेना था। टोल टैक्स के ये नाका दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर से लगभग एक किलोमीटर दिल्ली की तरफ एक घनी आबादी के क्षेत्र में स्थित है, जहां पर तीन विद्यालय भी हैं। महापौर ने वहां पर स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। नागरिकों ने बताया कि आबादी के मध्य स्थित होने के कारण टोल नाके पर भारी वाहनों का दबाव रहता है और अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है। डॉ ओबेराय ने नागरिकों की परेशानी सुनने के पश्चात वहां उपस्थित क्षेत्रीय उपायुक्त और अन्य पदाधिकारियों को जल्द से जल्द नागरिकों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि टोल नाके को स्थानांतरित करने के विषय में जल्द ही सभी पक्षों के साथ बैठक की जाएगी और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और अब मौसम। राजधानी में आज भी कड़ी धूप खिली रही, पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवा और बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप बनी रहेगी। कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवगठित केंद्र सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में दो बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी में चल रही पानी की कमी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है। यमुना में बाढ़ की स्थितियों से निपटने की तैयारियों के लिए शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ बैराज का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।